सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण जय। कन्हैया प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेहि। सह गणालिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे నిర్విశేష శూన్యవాది పశ్చాత్య దేశకారి జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రామం రామానుజం సీతా భరతం భరతానుజం సుగ్రీవం వాయుసూనం చ ప్రణమామి పునః పునః. प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, उनके अनुज श्री लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को, और साथ ही साथ उनके परम मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान को भी बारंबार प्रणाम करते हैं. हरे कृष्ण. तो पिछले दो दिनों से रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं. ऐसी कथा जो जब कानों से हृदय तक जाती है तो हृदय को शुद्ध करती है. और कोई उपाय और कोई मार्ग नहीं है इस हृदय को शुद्ध करने का. केवल कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की कथाएं ये हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं. और ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं जब इस जगत में आते हैं, जिसका वर्णन बड़े बड़े आचार्य अपनी टीकाओं में करते हैं, कई कवि उसके ऊपर भजन लिखते हैं, और इस प्रकार से ये लीलाएं बड़ी प्रसिद्ध हो जाती हैं. आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां वे वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करते, भगवान कृष्ण को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, लेकिन फिर भी ऐसे नामों का उच्चारण करते हैं, ऐसे गीतों को गाते हैं, ऐसी कथाओं को सुनते हैं जो रामायण से संबंधित हैं. क्योंकि रामायण बड़ी प्रचलित है. रामायण शत कोटि अपारा, करोड़ों करोड़ों श्लोकों से जिसमें भगवान श्री राम का गुणगान किया जाता है उसे रामायण कहते हैं. वैसे तो रामायण हम लोग वर्णन कर रहे थे कि गंगा के समान है. श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्. और ऐसी लीलाएं जब भगवान करते हैं, इस जगत में आते हैं, तो ये उनका अनुग्रह होता है. अनुग्रहाय भक्ताना मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्. भगवान जब आते हैं तो ये उनका अनुग्रह है उनके भक्तों पर, साधारण जीवों पर, कि किस प्रकार से वो लीलाएं करते हैं. अनुग्रहाय भक्ताना मानुषं देहमास्थितः, मनुष्य का देह लगता है कि बड़े साधारण मनुष्य हैं. जैसे श्री राम की कथा, ऐसा लगता है अरे देखो अपनी पत्नी तक को तो संभाल नहीं पाए, पता नहीं कहाँ है, ढूंढ रहे हैं जंगल में, वानरों को भेजा है. तो बड़ी साधारण क्रिया, बड़ी साधारण कार्य लगते हैं, लेकिन भगवान इसीलिए करते हैं. मानुष देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडा, ऐसी क्रीड़ाएं जो भगवान करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं, जब आगे चलकर भक्त उनका भजन करते हैं या श्रुत्वा, और उस भजन को जब हमारे जैसे बद्ध जीव सुनते हैं, या श्रुत्वा तत्परो भवेत, तो जीव शुद्ध हो जाता है. ये भगवान की कथा सुनने का महत्व है या फल है. हम लोग श्रीमद् भागवत में देखते हैं शुकदेव गोस्वामी कई लीलाओं का वर्णन करते हैं भगवान की लीलाओं का, भगवान के भक्तों की लीलाओं का। और हर लीला के बाद जब किसी भक्त की लीला कोई प्रसंग सुनाते हैं तो फिर एक श्रुति फल देते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको बड़े ध्यान से बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, उनको मुक्ति प्राप्त होती है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये लाभ है, ये फल है भगवान की इन कथाओं के श्रवण का। और फिर इसको लोक गीतों में कवि बड़ा गुणगान करते हैं। भगवान श्री राम की तो लीलाएं बड़ी ही प्रचलित हैं, कई महान कवियों ने अपने भजनों में इनको गाया है। जैसे भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, चुमक चलत राम चंद्र बाजत बैजनिया, चुमक चलत किलकी किलकी उठत धाय, पड़त भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, तुमक चलत। भगवान चल रहे हैं और उनके पांव में जो पैंजनिया वो बज रही है, बड़े सुंदर वर्णन है। छोटे छोटे पांव हैं भगवान के, भगवान बहुत छोटे से बालक हैं, शरीर पर केवल आभूषण धारण किए हुए हैं और उन आभूषणों की आवाज आ रही है भगवान के चलने से। चुमक चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया। और कभी कभी क्योंकि बहुत छोटे हैं भी चलना आता नहीं है तो गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। धाय मात गोद लेत, कौशल्या भागती दशरथ की रानी, उजाकर उठा लेते हैं गोद। तो ऐसी बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन लोक कथाओं में होता है, लोक गीतों में होता है, आचार्यों की टिप्पणी में होता है। और फिर धीरे 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 इसका प्रसार प्रचार और सारा जगत इन लीलाओं का आस्वादन करता है। तो रामायण में हम लोग सुन रहे थे, जैसे हमने पहले भी सुना कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने आदर्श से हम सबको शिक्षाएं देते हैं कि कैसे जीवन में रहना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हमने सुना कि कैसे भगवान के महान भक्त हनुमान जी, उन्होंने छलांग लगाई, महेंद्र पर्वत के ऊपर से कूद गए लंका में जाने के लिए, बीच में कई बाधाओं को पार किया, फिर लंका पहुंचे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे सिंह का ये द्वेष का सूचक है, सिंह का सहन नहीं कर पाई कि हनुमान जी उसके ऊपर रहें, इसलिए परछाई को पकड़कर खींच लिया सिंह का ने। ऐसे ही द्वेषी व्यक्ति ये सहन नहीं कर पाता कि कोई उसके ऊपर रहे, इसीलिए उसके दोषों को, उसकी गलतियों को, उसके अंधकार में तरफ को वो खींच लेता, उसको प्रकट करता है ताकि वो उसका पतन हो जाए, वो गिर जाए अपनी सेवा से, अपने कार्य से। तो सिंहिका के द्वारा हम ये सीखते हैं। और लंकिनी जो मोह में डालती है, भ्रमित करती है, ये सारा वर्णन हम लोग कल सुन चुके हैं। और फिर कैसे हनुमान जी ने द्वेष को कैसे हटाना चाहिए, इसको भी अपने उदाहरण से सिखलाया। कैसे दोष ढूंढने की प्रवृत्ति को दूर करना चाहिए, इसको भी हनुमान जी ने सिखलाया। सीधे सिंहिका के हृदय में प्रवेश कर गए और उसके हृदय को फाड़ कर बाहर निकल आए। तो ये लीलाएं, ये शिक्षाएं हैं, इसीलिए शास्त्रों को हमारे लिए एक आदर्श माना गया है, जिसमें मानव समाज इन शिक्षाओं को ग्रहण करे और अपना जीवन एक मनुष्य के स्तर पर बिताए। आज हमारा जीवन पशु स्तर पर है, आहार निद्र भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभि नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशुभि समाना। अगर धर्म नहीं है तो हम पशु हैं। शास्त्रों में कभी कभी बहुत जटिल या बहुत कड़क शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, धर्मेन हीना पशुभि समाना। धर्म नहीं है, पालन नहीं कर रहे हैं, और धर्म क्या है इसको जानना चाहिए। ये हमें रामायण, महाभारत, हनुमान इत्यादि भक्त सिखलाते हैं। क्योंकि जैसे कल परसों हमने वर्णन किया था कि पद्म पुराण में सनत कुमारों ने भक्ति को रहने का स्थान दिया, और वो स्थान था भक्तों का हृदय। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गतासन था। तो इसीलिए भक्ति ये प्रकट होती है भक्तों के हृदय से। जब भक्तों की कृपा आती है तो भक्ति आती है हृदय में, और जब भक्ति आती है तो कृष्ण को भी आना पड़ता है। क्योंकि भक्ति के छह लक्षणों में से एक लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं, श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति के छह लक्षणों को रूप गोस्वामी ने बताया। बाकी अन्य लक्षण तो ठीक हैं, वो हमारे जो पाप है उनको नष्ट कर देती है, जलन को नष्ट कर देती है, मुक्ति को भी तुच्छ बना देती है इत्यादि, मोक्ष लघुताकृत। सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। तो ये गुण है भक्ति का। तो जब हृदय में भक्ति आती है, श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। अन्यथा कृष्ण को कौन आकर्षित कर सकता है? कृष्ण को केवल भक्ति आकर्षित करती है, जीव के हृदय की भक्ति। हमारा धन, हमारा बल, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, हमारा वैराग्य, हमारा तप, ये आकर्षित नहीं करता है कृष्ण को। अगर हृदय में भक्ति नहीं है, ना आराधितो यदि हरि तपसः तत्किं, नारद मुनि कहते हैं। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो कैसी तपस्या, क्या लाभ है ऐसी तपस्या का? हनुमान जी लंका पहुंच गए। कल हमने सुना कि हनुमान जी घूम रहे हैं अपनी सेवा के लिए, ब्रह्मचारी होते हुए रात्रि के समय स्त्रियों को ऐसी अस्त व्यस्त अवस्था में देख रहे हैं। ऐसी स्त्रियां जिन्होंने मदिरा पान किया हुआ है, उन्हें खुद अपने होश नहीं है, उनके कपड़े ठीक नहीं है, पर हनुमान जी उन सारी स्त्रियों में सीता देवी को खोज रहे हैं। और उनके मन में आया कि ये ब्रह्मचारी के लिए ठीक नहीं, लेकिन सेवा के हेतु उन्होंने स्वीकार किया। फिर ढूंढते ढूंढते विभीषण से भेंट, अशोक वाटिका में गए, और फिर अशोक वाटिका में अपनी सेवा पूरी होने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि थोड़ी और सेवा करनी चाहिए। हनुमान जी सिखला रहे थे कि हमें सेवा में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, अर्थात कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस अब मेरी सेवा हो गई, इसके आगे कुछ नहीं, बढ़ते रहना चाहिए। प्रतिपदम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, ये जो आनंद है सेवा का, ये हर पद पर हर क्षण बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए एक मापदंड है। जैसे किसी को बुखार होता है तो उसका बुखार कैसे देखा जाता है, थर्मामीटर लगाते हैं और उसमें देखते हैं हाँ कितना डिग्री बुखार हुआ है, अरे 102 डिग्री है, अरे 105 पे पहुंच गया। ऐसे ही हमारे लिए क्या मापदंड है ये देखने का कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं या नहीं, हम सही मार्ग पर हैं या नहीं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर पद पर केवल आनंद कंद। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि भगवान की सेवा हमें आनंद दे। तो हनुमान जी ने कहा और सेवा करनी चाहिए, मुझे देखना चाहिए सारे राज्य को। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उखाड़ फेंका, और फिर उस समय रावण ने क्रोध में आके 80,000 सैनिकों को भेजा, और वो सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। अपने बड़े बड़े सेनापतियों को भेजा, हनुमान जी ने क्षणों में खत्म कर दिया। और फिर अक्षय कुमार अपने पुत्र को भेजा, उसको भी समाप्त कर दिया, मार डाला उसके पुत्र को। और उससे क्रोधित होकर इंद्रजीत को भेजा। हनुमान जी चाहते तो इंद्रजीत को भी मार सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे तो हनुमान के लिए रावण को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं बंध जाता हूं, क्योंकि हनुमान जी ने एक वचन दिया था सीता देवी को कि मैं जब बहुत ही जल्द श्री राम को यहां लेकर आऊंगा। जब सीता देवी से मिले थे और जब जा रहे थे तो सीता देवी की अवस्था को देखकर हनुमान जी सहन नहीं कर पाए। सीता देवी प्राय रोने लगी, कहने लगी कि केवल कुछ ही समय है, क्योंकि अभी अभी हनुमान जी ने देखा था कि रावण कैसा आचरण कर रहा था सीता देवी के साथ। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, रावण ने समय दिया था। तो सीता देवी रोने लगी, कहने लगी कि केवल, पहले तो उन्होंने पूछा कि अभी तक श्री राम आए क्यों नहीं, क्योंकि सीता देवी को पूर्ण विश्वास था जब रावण उन्हें ले जा रहा था कि बहुत थोड़े समय के लिए है। ऐसे एक भक्त को विश्वास होना चाहिए जब वो कष्ट में हो। सीता देवी को विश्वास था कि थोड़े समय का कष्ट है, श्री राम आएंगे और मुझे इस दुष्ट रावण के हाथ से बचा कर ले जाएंगे। एक भक्त को भी भक्ति करते समय ये विश्वास होना चाहिए कि भक्ति में जो कष्ट हो रहा है ये थोड़े समय के लिए है। अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए हृदय सीता देवी को था। इसलिए सीता देवी ने हनुमान से पूछा कि आए क्यों नहीं अभी तक श्री राम, क्या ऐसा है कि मुझे भूल गए? हनुमान ने कहा नहीं। हनुमान ने बतलाया कि किस प्रकार आपके विरह में, एक बहुत सुंदर श्लोक वाल्मीकि रामायण के इस सुंदर कांड में आता है, जिसको लोगों ने गलत दृष्टि से प्रस्तुत किया है। ऐसे लोग जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, ऐसे लोग जो परंपरा से ज्ञान नहीं लेते, ऐसे लोग इन श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। जब सीता देवी ने पूछा कि आए क्यों नहीं श्री राम, तो उस समय हनुमान ने कहा कि आप ऐसा मत सोचिए कि वो आपको भूल गए हैं। और उन्होंने कहा कि आपके विरह में श्री राम का, उन्होंने श्री राम की अवस्था का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि आपके विरह में श्री राम ने कंद मूल खाना भी बंद कर दिया है और हिरण इत्यादि या पशु का मांस तो कोई राघव खाते ही नहीं है। ये श्लोक का तात्पर्य है, अर्थात हनुमान जी कहना चाह रहे थे कि अगर जंगल में कोई व्यक्ति है तो केवल दो चीजें खा सकता है, या तो कंदमूल खाएगा जो पेड़ों पर है, या फिर पशु का शिकार करके खाएगा, इसके अलावा और कोई चीज तो जंगल में मिलती नहीं है। तो वो कहना चाह रहे थे कि आपके विरह में श्री राम ने भी उपवास रखा है, कुछ खा नहीं रहे हैं, लेकिन इसको उन्होंने कहा कि कंदमूल खाना बंद कर दिया और पशु का मांस तो कोई राघव खाते, राघव मतलब उनके वंश में किसी ने नहीं खाया, लेकिन इसको लोग तोड़ मरोड़ कर कहते हैं। इसको कहते हैं कि देखो हनुमान ने क्या कहा सीता से। हनुमान ने कहा कि आपके विरह में श्री राम ने कंद मूल खाना छोड़ दिया है और मांस खाना भी छोड़ दिया। तो लोग कहते हैं देखो मतलब छोड़ दिया है, मतलब पहले खाते थे, जब आए थे जंगल में, जब राजमहल में थे तो खाते थे, लेकिन आपके विरह में छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है, मांस खाना छोड़ दिया। हम लोग भी कहते हैं ना, भक्ति में आगे हमने बड़ा त्याग किया, मांस खाना छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, जैसे ऐसे कि जन्म जन्मों के बंधन को तोड़ दिया कृष्ण के साथ, मांस खाना छोड़ दिया, कौन सी बड़ी बात है। खैर, तो इस बात को, इस गलत दृष्टि से और इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई, सारे समाज में चर्चा चल रही थी। एक समय था जब बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी कि क्या राम ने भी मांस खाया। तो उस समय इस्कॉन के भक्तों से भी जब ये पूछा जाता था तो कोई इस प्रकार की उदाहरण देते। तो कभी कभी एक सन्यासी ने एक बार एक सन्यासी से प्रश्न किया कि क्या राम ने मांस खाया। तो उन्होंने कहा अगर खा भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है, अरे वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर और हंगामा हो गया कि देखो इन्होंने कहा है, इन्होंने स्वीकार किया कि खाया है, कह रहे कि क्या हो गया। उनके कहने का अर्थ था कि भगवान है। ऐसा ही जीसस के समय पर भी कहा गया है कि जीसस ने भी तो फिश खाई, जीसस ने भी मीट खाया। लेकिन ये भी गलत धारणाएं हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस समय मीट शब्द भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था उस समय की भाषा के अनुसार। और हम जानते हैं कि धीरे धीरे काल के प्रभाव से स्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और भाषा भी बदल जाती है। आज ही हम लोग देखें तो बेंगलोर में कन्नड़ अलग है, बेलगाम में कन्नड़ अलग है ना, शब्द अलग अलग है। तो जब इतने समय में इतने ही स्थान में बदल सकती है तो फिर इतने सारे वर्षों में क्या भाषा नहीं बदल सकती। तो इसलिए ऐसी भ्रांतियों को, ऐसी गलत धारणाओं को हमें दूर करना चाहिए एक परंपरा में आके, नहीं तो हमारा सारा जप, हमारा सारा तत्व व्यर्थ है। संप्रदाय विहीनस्ते मंत्र निष्फलः मतः, पद्म पुराण बताता है कि अगर आप संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, आपने एक प्रामाणिक गुरु से संबंध नहीं जोड़ा जिसने आपका संबंध कृष्ण से जोड़ा, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर मंत्र निष्फलः मतः, आपका जप आपका तप सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपकी समझ गलत है। ये वाल्मीकि रामायण शुरुआत से इस बात को स्थापित करती है। वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ कैसे हुआ हम सब जानते हैं। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले जब रामायण प्रारंभ की तब ये सुना था कि वाल्मीकि मुनि के मन में प्रश्न आया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई दोष नहीं है, पूर्ण रूप से दोष रहित है, कोई दाग नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं करता, हमेशा मर्यादा का पालन करता है, बड़ा सुंदर है, वीर है, ये सारे गुण एक व्यक्ति में हो सकते हैं? नारद मुनि ने कहा हो सकते हैं। और उन्होंने कहा केवल हो नहीं सकते हैं, अभी इसी समय अयोध्या में भगवान श्री राम हैं जो राज कर रहे हैं। तो फिर उन गुणों को बतलाया, चले गए। अब वाल्मीकि मुनि स्नान करने गए, वाल्मीकि मुनि ने एक दृश्य देखा, दो पक्षियों को प्रेम का आदान प्रदान करते और अचानक एक तीर आया और एक पक्षी मर गया। बहुत क्रोध आया, मुंह से एक श्राप निकला, लेकिन वो श्राप भी छंद के रूप में, मां निषाद प्रतिष्ठानम त्वं गतः शाश्वती समः यत्क्रोशं मिथुनादेकं अग्निः काममोहितम्। कहने लगे कि तुमने मारा है, तुमको कभी शांति नहीं मिलेगी हे निषाद। लेकिन ये ज्ञान होने पर भी, ये श्लोक बोलने पर भी वाल्मीकि मुनि समझ नहीं पाए कि ये क्यों बोला है, उसके अर्थ को, उसके सार को नहीं समझे। वो चिंतन करने लगे क्या हुआ है, मुझे क्रोध कैसे आया, मैंने ये श्राप कैसे दिया, और ये इस श्राप ऐसे शब्दों में क्यों आया, कुछ नहीं जान पाए। बड़े विचलित हो गए, सोचने लगे। लेकिन फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है ये दरअसल रामायण की रचना का प्रारंभ है। अब 24,000 श्लोकों की रचना करो और रामायण लिखो, भगवान श्री राम का चरित्र। और तब उनको ज्ञान हुआ, सार को समझे। अर्थात हम अगर एक गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं, एक परंपरा में नहीं हैं, तो हो सकता है हमें ज्ञान हो, हम बड़े बड़े श्लोक बोलें, सारे उपनिषद सारे वेदों को बता दें, लेकिन उसके मर्म को, उसके सार को नहीं समझेंगे जब तक गुरु से संपर्क नहीं होगा। ये वाल्मीकि मुनि शुरुआत में समझाते हैं, श्लोक बोल दिया उन्होंने, उनके ही मुख से आया लेकिन समझे नहीं, सार को समझाया ब्रह्मा जी ने गुरु के रूप में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्म को समझना महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि अगर हम धर्म की रक्षा करें, धर्म और रक्षित रक्षित, धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन धर्म क्या है इसको समझना चाहिए। जहां हम धर्म को नहीं समझते हैं, धर्म के उद्देश्य को, सार को नहीं समझते हैं, तो वो व्यर्थ हो जाता। हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारी भक्ति का उद्देश्य गलत है तो भक्ति नाश हो जाती। रावण ने तपस्या की, कल हम लोगों ने सुना, रावण, शूर्पणखा, विभीषण, कुंभकर्ण सबने तपस्या की, लेकिन उद्देश्य क्या था? भौतिक जगत पर अपना प्रभाव जमाना, वश में करना, इसीलिए हमें असुर कहते हैं। इस उद्देश्य को जानना चाहिए। जब हम इस उद्देश्य को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं और एक गुरु परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, तब हमारे सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, हमारी आध्यात्मिक मृत्यु होती है। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण महाभारत में आता है। कर्ण, कई समाज में, कई स्थानों में कर्ण को बड़ा सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि कर्ण ये बड़ा दानी पुरुष था और इसको बड़े धोखे से मारा गया, और इसलिए कई बार अर्जुन या कृष्ण की निंदा की जाती है कि कर्ण को धोखे से मारा, नहीं तो युद्ध हार जाते ये लोग। तो बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये वो समय था जब युद्ध हो रहा था, कर्ण और उसके सारथी बने हुए थे शाल, और उस समय वो चला रहे थे रथ और दोनों का संवाद चल रहा था। अब ऐसा हो रहा था धीरे धीरे भगवान की योजना से कि कर्ण का अंतिम समय आ रहा था, और फिर अपने ही सारथी के साथ बहुत जोर से विवाद हुआ और उन्होंने उस रथ को वहीं छोड़ दिया। ये रहा तुम्हारा रथ, ये रही घोड़ों की लगाम, अब तुम रथ भी चलाओ और युद्ध भी करो। और वो चले गए। कर्ण एक हाथ से प्रयास कर रहा है घोड़ों को कंट्रोल, वश में करने का, और एक हाथ से तीर चला रहा है, और ऐसे में अर्जुन का सामना। और अर्जुन का सामना तो वैसे बड़े बड़े महारथी नहीं कर सकते, और यहां पर कर्ण एक हाथ से घोड़ों को संभाले और दूसरे हाथ से रथ कैसे चला सकता है अस्त्र शस्त्र। लेकिन बहुत सारे लोग मर चुके थे महाभारत में, करोड़ों करोड़ों लोगों की जाने गई। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी। अगर हम लोग उसका उसको जोड़ें कि कितने सैनिक होते हैं तो कम आते हैं, करोड़ों सैनिक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन महाभारत में वर्णन है कि 18 अक्षौहिणियां प्रमुख सेनाएं थी, और उसके अलावा कई ऐसे राजा थे, छोटे मोटे राजा, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता युद्ध में। तो फिर कर्ण, उसका जो रथ था वो शवों में और खून से जो कीचड़ बन गया था उसमें फंस गया, शवों के बीच में, और शवों के बीच से निकालना बड़ा कठिन था। कर्ण नीचे उतर आया और कर्ण अपने रथ के पहिए को खींचने लगा, और अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि मारो, तीर चलाओ। अर्जुन झिझक गया कि अरे निहत्ता। और उस समय कर्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम कैसे धर्म का पालन कर रहे हो? देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, निहत्ता हूं, और मेरा रथ का पहिया भी फंस गया, सारथी भी नहीं है मेरा, ऐसे में युद्ध करना ये धर्म नहीं है, इसलिए मुझे पहिया निकालने दो। और पहिया निकालने लगा, और पहिया निकालते निकालते कर्ण को स्मरण आने लगा। कर्ण को स्मरण आया कि जो श्राप उसे मिले थे कि अंतिम समय में वो मंत्रों को भूल जाएगा, उन अस्त्र शस्त्रों को भूल जाएगा जिसको उसने धोखे से सीखा था अपने गुरु से। कर्ण ने अपने ही गुरु को धोखा दिया था, झूठ बोला था उनसे। कर्ण सोचने लगा, फिर ब्राह्मण का श्राप, सोचने लगा कर्ण, और धीरे धीरे कर्ण को सारी अपनी गलतियां दिखाई देने लगी। कर्ण को द्रौपदी का चेहरा दिखाई दिया, वो चेहरा जो उस असत सभा में कर्ण के सहयोग के कारण आंसुओं से गीला हो गया था, कर्ण को अभिमन्यु का चेहरा दिखलाई दिया। वो अभिमन्यु छोटा सा बालक था इन बड़े बड़े महारथियों के सामने, लेकिन सब लोगों ने मिलकर उस अकेले बालक को मारा। कर्ण भी वहां था, कर्ण को वो याद आया क्योंकि अब कर्ण का अंतिम समय आ रहा था, कर्ण स्मरण कर रहा था। लेकिन फिर इस सबको छोड़कर कर्ण पहिया निकालने लगा और निकालते निकालते वो धर्म की बातें करने लगा और धर्म को ही धर्म की निंदा करने लगा कि ये कैसा धर्म है उन ब्राह्मणों का, ये कैसा धर्म है परशुराम का कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन आज ऐसी अवस्था में जब मेरे बहुत विकट समय है, कैसा धर्म है जो मेरी रक्षा नहीं कर रहा। फिर क्यों कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः। और उस समय भगवान कृष्ण ने उससे कहा, बड़ा सुंदर संवाद है, भगवान कृष्ण ने सुना कि कर्ण धर्म की बातें कर रहा है, अर्जुन को धर्म सिखला रहा है, और कृष्ण ने कर्ण से कहा कि कर्ण तुम कैसे धर्म की बात करते हो, तुम कह रहे हो जीवन भर धर्म का पालन किया, किस धर्म का पालन, तुम जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है, तुमने उसका साथ दिया। क्या सभा में द्रौपदी को बुलाना, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, उसको दुर्योधन के पास बुलाकर बिठाने का प्रयास करना, क्या यह धर्म था? अभिमन्यु अकेला था, क्या यह धर्म था? विराट के युद्ध में जिस समय अकेले अर्जुन ने तुम सबको हराया था, तुम अकेले थे जिसने कहा कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, क्या यह धर्म था? हालांकि भीष्म द्रोण सबने कहा कि नहीं समय पूरा हो गया है, लेकिन तुमने कहा कि नहीं समय पूरा नहीं हुआ, क्या यह धर्म था? कर्ण कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने कहा आज भी अगर तुम सोचते हो कि तुम धर्म का पालन करते हो तो बुलाओ अपने मित्र को और कहो उससे कि अभी युद्ध समाप्त करे, राज्य दे दे। अगर तुम धार्मिक हो, तुम धर्म का पालन करते हो, हृदय से इस बात को जानते हो तो बुलाओ उसको। कर्ण ने सिर झुका दिया, कर्ण कुछ बोल नहीं पाए। फिर भगवान ने कहा कि हे कर्ण, अगर जीवन भर तुमने जिस चीज को धर्म समझा, अधर्म को धर्म समझकर पालन किया, तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते। इसीलिए जब हम लोग धर्म का पालन करते हैं तो हमें जानना चाहिए धर्म क्या है। संसिद्धिं हरितोषणम्, ये धर्म है जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। ऐसी सेवा, ऐसे कार्य जिससे भगवान प्रसन्न हो, वो धर्म है। हमारी प्रसन्नता नहीं, मनगढ़ंत धर्म नहीं। कर्ण ने अपना धर्म माना मित्र की सहायता करना, लेकिन वो भगवान की संतुष्टि नहीं था, इसलिए अधर्म। तो इस प्रकार हमें जानना चाहिए कि धर्म क्या है। हनुमान जी जब सीता देवी से ये याचना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सीता देवी पूछने लगे कि क्यों नहीं आए श्री राम अभी तक, तो उन्होंने बतलाया कि श्री राम आपके विरह में बड़े दुख में हैं और ढूंढ रहे हैं, और ऐसे में उनकी सुग्रीव से भेंट हुई है और हजारों हजारों लाखों वानर अलग अलग दिशा में आपको ढूंढ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि बहुत जल्द श्री राम आएंगे। सीता देवी कहने लगी मैं नहीं जानती कि मेरा ये शरीर रहेगा या नहीं, मैं प्राण बनाए रखूंगी या नहीं जब तक श्री राम आएंगे। तो जब हनुमान ने ऐसा सुना तो हनुमान से सहन नहीं हुआ, हनुमान ने सीता देवी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई आवश्यकता नहीं है इंतजार करने की, आप अभी इसी समय मेरे कंधों पर बैठ जाइए, मैं आपको अभी यहां से ले जाता हूं। और उस समय तक हनुमान जी छोटे से थे, हमने कल वर्णन किया था हनुमान जी अंगूठे के आकार के थे। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि अरे सीता देवी सोचेंगी है तो इतना छोटा और मुझे कह रहा है कि ले जाऊंगा, तो अचानक हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ा दिया, विशाल आकार। उन्होंने कहा बैठिए मैं ले जाता हूं। सीता देवी ने स्वीकारा नहीं। सीता देवी ने कहा मैं एक सती स्त्री हूं, मैं किसी दूसरे पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती, इसीलिए श्री राम को ही आना होगा। ये भक्ति है। एक गुरु नंदन, हमें अगर भक्ति करनी है तो केवल कृष्ण भक्ति और कोई नहीं। और ऐसा दृढ़ विश्वास कृष्ण आएंगे, भगवान के शब्दों में विश्वास, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैयावेश चेतसा, भगवान आएंगे ये विश्वास होना चाहिए हृदय में। और ऐसे विश्वास से जितने भी कष्ट भक्ति में आए सीता देवी ने सहन किया, क्योंकि सीता देवी जानती थी आएंगे राम, आएंगे मेरी रक्षा करेंगे। एक भक्त को ये विश्वास होना चाहिए भगवान आएंगे और अवश्य आएंगे, लेकिन हमें वो विश्वास वो श्रद्धा को जागृत करना है। जब तक हमारे हृदय में वो श्रद्धा नहीं पड़ेगी आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये श्रद्धा ये हमें इस भौतिक जगत से विरक्ति दिलाती है, नहीं तो हम लोग केवल इसी यहां की सुविधाओं में फंस जाते हैं, इस भौतिक जगत में स्थितियों में आनंद ढूंढते हैं। दरअसल स्थिति हमें आनंद नहीं देती है। अगर व्यक्ति का मन कृष्ण में लगा है तो वो कहीं भी आनंद में है। ग्रहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, फिर उसके लिए क्या है। एक बार एक साधु थे, जंगल में रहते थे, और उनके पास उनका जो सारी संपत्ति थी वो केवल एक ओढ़ने के लिए कंबल, क्योंकि जंगल में ठंड होती थी, और तीन पत्थर, यही उनकी सारी संपत्ति थी। रात्रि के समय उन तीन पत्थरों पर वो सोते थे, एक सिर के नीचे, एक कमर के नीचे और तीसरा पेट पैर के नीचे स्ट्रेट, और ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। उससे क्या लाभ होता था, अगर कोई सांप वगैरह आ जाए तो वो नीचे से निकल जाता था, बारिश का पानी आ जाए तो वो नीचे से निकल जाता था, और ऊपर से जो पानी है वो कंबल से गिर जाता था, तो कोई चिंता नहीं, आराम से सोते थे। और दिन के समय उन तीन पत्थरों का आसन बनाते थे और उस पर बैठकर भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे अपना जीवन बिताते, बड़े आराम से रहते, प्रसन्न रहते। एक बार राजा आए जंगल में और राजा ने देखा, रे मेरे राज्य में ये साधु इतनी तपस्या इतने कष्ट सह रहा है, तो उन्होंने तुरंत पालकी भेजी, अपने सैनिकों को भेजा वापस जाकर कि जाओ उस साधु को बुला लाओ, हम यहां उसको बड़े आराम से रखेंगे। तो सैनिक आए, साधु से कहा कि आपको बुलाया है, तो साधु ने अपने जो चादर थी कंबल था उसमें तीनों पत्थर डाले, उसको झोली लगाई और चल दिए। तो सैनिक देख रहे थे, भाई कहां ये लेके जाएगा। तो फिर सैनिक उसको लेकर आए, महल में आया, राजा ने बड़ा सुंदर स्थान, बड़े सुंदर मखमल का गद्दा उसके लिए बनाया और उसको दिया कि भाई आप यहाँ पर सो, मैंने आपको सोते हुए देखा है जंगल में, पत्थरों पर सोते हो तो ठीक नहीं, आप यहाँ पर सो। तो फिर उस समय उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, तो राजा चले गए, उसने अपनी झोली खोली, तीन पत्थर निकाले, एक सर के नीचे, एक कमर के नीचे और एक पांव के नीचे, सो गया आराम से। सुबह में राजा से भेंट हुई, राजा ने पूछा साधु महाराज अच्छा लगा ना, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी नींद आई। तो राजा ने कहा, देखो मैंने आज कुछ तो किया इस साधु के लिए, उसको एक मखमल का गद्दा दिया, आराम दिया, ताकि साधु आराम से सो सके। तो फिर राजा ने कहा कि अब आप यहीं रहिए। तो उसने कहा, नहीं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, राजमहल में तो आप जैसे लोगों के लिए है, मैं फिर जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल आपको बहुत अच्छी नींद आई थी, तो जिस पर आप सोए थे वो ले जाइए। तो उसने कहा, वो तो मैंने पहले ले लिया। तो राजा को समझ नहीं आया, बेड तो वहीं पर पड़ा है मखमल का, उन्होंने कहा वो तो मैंने ले लिया ऑलरेडी। तो फिर उन्होंने राजा को समझाया कि देखो राजन, ये जो आनंद है ये स्थितियों में नहीं है, ये चीजों में नहीं है, ये चीजें, ये मृत चीजें हैं, आनंद इनमें नहीं है। व्यक्ति के लिए आनंद केवल भक्ति में है। अगर उसका मन कृष्ण में लगा है तो वो चाहे पत्थर पर सोए या मखमल के गद्दे पर, आनंद वही होगा। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है मखमल के गद्दे की, मेरे लिए पत्थर ही वही आनंद देते। इसी तरह हम सबको जानना चाहिए कि ये जो हमारा मन है इसको कैसे कृष्ण में लगाएं, कैसे भक्ति करें कि हमें ये भौतिक जगत के कष्ट सताएं नहीं, कोई सुविधाएं आकर्षित नहीं करें। तो हनुमान जी से सीता ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। और फिर हनुमान जी जाने लगे, हनुमान जी ने सीता देवी से पूछा कि आप कुछ ऐसा बताइए कि श्री राम मेरी बात सुनकर ये जान जाए कि मैंने आपको ढूंढ लिया। नहीं तो हो सकता है मैं कहूं और वो कहें कि भाई उनको विश्वास नहीं हो। तो फिर सीता देवी ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्रसंग बताती हूं जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। तो जब ये प्रसंग आप जाकर श्री राम को बताओगे तो फिर श्री राम मान जाएंगे कि आप मुझसे मिले हो, आपकी भेंट हुई। और फिर सीता देवी ने एक प्रसंग बतलाया, बड़ा ही वो प्रसंग ऐसा था कि वो केवल सीता देवी और रामचंद्र जी जानते थे। तो हनुमान ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, जब श्री राम के पास जाना तो इसको सुना देना। तो फिर हनुमान जी गए थे। तो अब हनुमान जी को रावण के पास ले जाया जा रहा है। हनुमान जी देखना चाहते थे, रावण से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा, अच्छा अवसर है, अब रावण से मिलते। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में रावण के प्रति भी करुणा थी, द्वेष नहीं था, द्वेष के कारण नहीं जा रहे थे, करुणावश जा रहे थे। क्योंकि हनुमान जी सोच रहे थे कि जाकर थोड़ा समझाता हूं उसको, हो सकता है मेरी बात मान जाए, और हो सकता है सीता को छोड़ दे, और हो सकता है कि उसकी मृत्यु नहीं। तो इस करुणावश हनुमान जी रावण के पास गए, कोई द्वेष से नहीं गए, उसको मारने नहीं गए। तो ये भक्त है श्री प्रभुपाद। ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, ऐसे लोगों के पास गए क्योंकि करुणा थी भगवान से प्राप्त। उस करुणा को लेकर उन्होंने सब में बांटा। और इसीलिए करुणा थी श्री प्रभुपाद की कि हजारों लोग उनकी शरण में आए उस करुणा को देखकर। श्री प्रभुपाद जब पाश्चात्य देशों में नवयुवकों को देखते जो नशे में या अवैध संग करते रहते, गलत कार्य करते रहते, तो श्री प्रभुपाद को क्रोध नहीं आता, द्वेष नहीं होता, उनको दया आती थी देखकर, उनकी आंखों में आंसू आते थे ये देखकर कि ये जीव जिसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिसे सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ये माया में है, ये सोच रहा है कि मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन देखो कितने कष्ट में। श्री प्रभुपाद का भाव था वो जब देखते थे ऐसे लोगों को। तो हनुमान जी भी करुणावश हो गए रावण के पास, बंद गए। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब उन्होंने उस इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और ब्रह्मा जी के अस्त्र को देखकर हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिया कि भाई ये ब्रह्मा जी का है, इसका विरोध नहीं करूंगा मैं, और बंद गए। लेकिन जब हनुमान जी बंधे, ब्रह्मा जी ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मेरा भी अस्त्र तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जब हनुमान जी छोटे से थे, बालक थे, बहुत शक्ति थी उनके अंदर, और एक दिन अचानक उन्होंने सूर्य को देखा, लाल लाल सुबह के समय। आप लोगों ने देखा होगा जब सूर्य सुबह उदय होता है एकदम लाल होता, बड़ा सुंदर लगता, और हनुमान जी को भूख लगी थी उस समय। हनुमान जी ने देखा ये लाल फल इतना बढ़िया, कूद रहे, बचपन से कूद रहे हैं इसीलिए लंका जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बचपन से आदत है उनको कूदने की, तो कूद गए एकदम, पहुंच गए सूर्य के पास। और सूर्य के पास जा रहे हैं, हाँ, तो वायु ने देखा अरे मेरा पुत्र ही सूर्य के पास जा रहे हैं, सब ठंडा कर दिया एकदम, एसी फर्स्ट क्लास, गर्मी नहीं लगे हनुमान जी को। हनुमान जी सूर्य के पास, सूर्य ने देखा नहीं क्या है, कौन आ रहा है। इंद्र को सूचना मिली कि कोई एक व्यक्ति सूर्य को खाने जा रहा है। राहु केतु ने कहा भाई हमारा डिपार्टमेंट है, तुमने हमें वचन दिया, ये उनके पास कैसे चला गया। तो फिर इंद्र ने आक्रमण कर दिया। अब हनुमान जी ने दूसरी तरफ देखा तो उनको और एक बड़ा फल दिखाई दिया, ऐरावत, इंद्र का हाथी। हनुमान जी का ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ है, चूस कर खाने के लिए अच्छा लगेगा। हनुमान जी उसकी तरफ भागे तो उसी समय वज्र से आक्रमण किया इंद्र ने उनकी, यहां पर इसको हनु कहते हैं, हनु। तो इस पर आक्रमण हुआ और हनुमान जी की मृत्यु हो गई, हनुमान जी मर गए, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान, यहां पर मार लगी थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो वायु को क्रोध आ गया, वायु ने सब जगह, आप जानते हैं कि सारी जगह तो सब वायु से चलती है, तो वायु ने कनेक्शन कट कर दिए सारे सब लोगों के। हम लोग कई बार इस चीज का वर्णन करते हैं कि हम लोग अपने दिनचर्या में बड़ी महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। कभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी इतनी चल रही है, महीने भर बाद एक बिल आ जाता है, अब आजकल बहुत छोटा हो गया, पहले बहुत बड़ा आता था, पेपर की कमी हो गई, इतना सा बिल आता है, ये आपका मीटर रीडिंग है, इतना आपका यूनिट हुआ, इतने रुपए के हिसाब से इतना पैसा है, अगर इतनी तारीख तक नहीं भरा तो डिस्कनेक्शन, फिर अंधेरे में रहो। तो हम लोग अपनी दिनचर्या में ये नहीं देखते हैं कि हम लोग जो हवा ले रहे हैं, आराम से सुनते रहते हैं, हम लोग सांस लेते रहते हैं, भगवान ने फ्री दी हुई है हवा। अगर भगवान ऐसे बिल भेज दे हमको एक महीने बाद, छोटा सा पेपर आ जाए, इधर कहाँ से आया, इधर वैकुंठ से आया, क्या लिखा है उसमें, उसमें लिखा है कि पिछले महीने में आपने इतनी सांसें ली, आपका मीटर रीडिंग ये है, और हर एक सांस का आपने 4,25,320 सांसें ली हैं, 2 रुपया सांस के हिसाब से 8,50,640 रुपया होता है, अगर 10 तारीख तक नहीं भरा तो डिस्कनेक्शन, तो क्या होगा, और हर महीने। तो हम लोग भगवान की इस कृपा को भूलते जाते हैं, और वो पापी लोगों के लिए भी है जो भगवान के विरुद्ध है। देखिए ये भगवान की करुणा है, कृपा है भगवान, ऐसा नहीं कि पापियों को बिल भेजते हैं और भक्तों को बोलते ठीक है कोई बात, किसी को नहीं भेजते। तो हम वायु ने सारी जो हवा थी वो खींच ली, बंद कर दी, सारों का डिस्कनेक्शन करना चालू किया, तो सारे घबरा गए, सब देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, अरे अंकल बच्चे वर्णन कर रहे थे कि कुछ भी इमरजेंसी होती है तो ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, उनको अभी आदत हो गई है, ब्रह्मा जी जब इमरजेंसी नहीं हो तो विचलित हो जाते हैं, यार कुछ हो नहीं रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं मेरे पास बुलाने के लिए। तो फिर ये लोग गए, ब्रह्मा जी वगैरह सब आए, वायु एक गुफा में बैठ गए थे, तो उनको बोला भाई क्या, इंद्र को देखो बेकार में कोई कारण नहीं था, मेरे पुत्र को मार दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं जीवित कर देता हूँ इसको, इतनी बात। तो उस समय ब्रह्मा जी ने केवल जीवित नहीं, वायु को संतुष्ट करने के लिए सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरा भी अस्त्र तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो अब ब्रह्मा जी के अस्त्र को स्वीकार तो किया, लेकिन इंद्रजीत ने देखा, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि वो पाश अपने आप खुल गया। हनुमान जी ऐसे ही थे, जैसे बंद गए हैं तो हनुमान जी ऐसे ही थे, वो पाश खुल गया चला गया, लेकिन हनुमान जी ऐसे ही खड़े थे। इंद्रजीत देख रहा था कि उसको विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अस्त्र वो इस वानर पर कोई असर नहीं कर रहा, लेकिन हनुमान जी ऐसे ही खड़े थे। हनुमान जी को पता था पाश चला गया, हनुमान जी बोला नहीं हिलूंगा नहीं, क्योंकि हिला तो फिर उसको पता चल जाएगा, लेकिन इंद्रजीत देख रहा था आश्चर्य। तो बाकी जो राक्षस थे उन्होंने वो रस्सियां लेकर बांध दिया हनुमान जी को, हनुमान जी ऐसे करते बंद रहते हैं आराम से, बंद रहे। तो सारे राक्षस सो रहे थे, सोच रहे थे कि हो हमारी जीत हो गई, हम जीत गए, हम जीत गए। हनुमान जी ने कहा ठीक, तो उस समय फिर खींचते हुए रावण के दरबार में लेकर आए। तो रावण ने देखा वानर, रावण को बहुत क्रोध आया, क्योंकि इतने सारे उसके सैनिकों को मार दिया, पुत्र को मार दिया। तो उन्होंने अपने सेनापति बृहस्त से कहा, पूछो इसको कौन है, क्यों आया है, पूछा भाई क्यों आए हो, कौन हो, और तुम्हारा ऐसा क्या, हमारे सैनिकों ने, हमारे असुरों ने, राक्षसों ने क्या किया था कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, और कौन हो तुम? रावण ने फिर पूछा कि कौन हो, क्यों आए। तो उस समय हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया रावण को, उन्होंने बतलाया, भगवान श्री राम का वर्णन करने लगे। लेकिन राम का वर्णन कैसे किया, उन्होंने कहा कि वो स्वामी जिनके लिए माया ये भौतिक जगत की पुनः पुनः सृष्टि करती है, वो स्वामी जिनके लिए ब्रह्मा शिव ये कार्य करते हैं, हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। देखिए ये तत्व है, ये ज्ञान है जो भक्त प्रदान करते हैं कि भगवान की स्थिति को समझना। हम लोग भगवान को, सभी को भगवान मान लेते हैं, लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं भगवान के प्रति। कोई कहते हैं भगवान एक प्रकाश है, कोई कहते हैं सब भगवान हैं, कोई कहते हैं सारे जितने भी लोग हैं वो भगवान हैं, कोई कहते हैं कि जितने भी देवता हैं वो भगवान हैं। बड़ी 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 गलत धारणाएं, लेकिन हनुमान जी सिखलाते हैं, वर्णन करते हैं कि वो स्वामी जिनके लिए ब्रह्मा शिव इत्यादि कार्य करते हैं, वो स्वामी जिन्होंने, फिर वो राम लीला का वर्णन करने लगे, जिन्होंने घर दूषण को मारा है, रावण को क्रोध दिला रहे थे, और साथ ही साथ उसको याद दिला रहे थे कि देखो मैं जिनका वर्णन करने जा रहा हूं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। वो व्यक्ति जिसने वाली का वध किया, खास करके वाली का संबंध दिख रहा है। क्यों वाली का बताया, क्योंकि वाली ये एक ऐसा व्यक्ति था, और एक थे सहस्त्र अर्जुन और वाली, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को परास्त किया था। बाकी रावण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तीनों लोकों में गया, किसी से परास्त नहीं हुआ। लेकिन जब वाली के पास आया, उस समय वाली अपना संध्या वंदन कर रहा था। वाली का नियम था कि वो संध्या वंदन करते हुए, इतनी उसकी शक्ति थी कि वो चारों दिशाओं में अलग अलग समुद्रों में जाकर आ जाता था। तो वाली संध्या वंदन कर रहा था, रावण ने देखा, रावण चुपके से आने लगा, चोर की तरह धीरे धीरे वाली को मारने के लिए। वाली ने देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अभी जब रावण आया तो वाली ने उसको ऐसे बगल में दबा लिया, एक हाथ से संध्या वंदन कर रहा था, दूसरे हाथ से दबा लिया यहाँ पर। रावण ऐसे उसका सर दबा हुआ है, और वो अपना संध्या वंदन करता रहा, और वैसे ही चारों दिशाओं में घूमकर आया, यहीं दबल बगल में दबा कर रावण को। और फिर जब सब उसका कार्य हो गया, उसकी संध्या वंदन सब हो गया, तब उसने रावण को छोड़ा, पूछा भाई क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो। और फिर एक महीने तक उसको बंदी बनाकर रखा वाली। फिर ब्रह्मा जी को आना पड़ा, छोड़ दो यार ये, क्योंकि उसने फिर मित्रता कर ली वाली से। रावण ने देख लिया कि इसको मार नहीं सकता हूं मैं, इससे हार जाऊंगा, तो हम लोग तो मित्र हैं भाई, क्यों झगड़ा करना आपस में। तो हनुमान जी याद दिलाने लगे कि वो वाली का वध जिन्होंने किया, मैं उनका सेवक और मैं उनका संदेश लेकर आया। फिर वो कहने लगे कि हे रावण, और वर्णन है उसका, सार ये है कि उन्होंने वर्णन किया कि हे रावण, तुम मूर्ख मत बनो, तुम एक बहुत महान परिवार में जन्म ले चुके हो। उलट से ऋषि ये एक चंद्रमा के समान है, इनकी जो कीर्ति है, इनका जो गुणगान है, ये चंद्रमा के समान है, लेकिन इसमें धब्बा मत लगाओ, इसमें दाग मत बनो। उलट से ऋषि के ही वंश में रावण आते हैं, तो इसमें दाग मत लगाओ। और फिर एक बहुत सुंदर उपमा, बहुत सुंदर उदाहरण हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि रावण ये जान लो कि वो नदी जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है, जिसका कोई स्रोत नहीं होता, जो लगातार स्रोत 12 महीने बहने वाली नदियां अलग होती हैं और केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली अलग। तो कहने लगे कि जिनका कोई स्रोत नहीं होता जिन नदियों का, वो नदियां बारिश समाप्त होते ही सूख जाती हैं। ये बड़े सुंदर दृष्टांत है हम सब के लिए। अगर हम अपने जीवन में आनंद की नदी को चाहते हैं या आनंद के सागर को चाहते हैं, तो आनंद की नदी ये, इसका अगर कोई स्रोत हम किसी से जुड़े नहीं हैं, हमारा संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, तो फिर वो बारिश में बहने वाली नदी के समान है, आया और खत्म हो, सूख जाता, फिर वो इस भौतिक जगत का सुख और दुख है। कभी सुख लगता है, कभी दुख लगता है। जब वर्षा ऋतु है तो पानी भरा हुआ है, बहुत सुख है, वर्षा समान दुख चालू हो गया। लेकिन अगर वही नदी किसी स्रोत से जुड़ी हुई है तो साल भर उसमें पानी बहता है, तो उसको कोई चिंता नहीं। गंगा कभी सूखती नहीं है, सुना है आपने, गंगा सूख गई समान, अब अगली बारिश में दर्शन करना। तो इलाहाबाद में जो मेला होता है वो केवल बारिश में होगा, बाकी टाइम पे हो नहीं सकता, नहाएंगे कहां पर, पानी ही नहीं। इसी तरह अगर जीव अपना संबंध भगवान से स्थापित करता है भक्ति के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, तो फिर उसका जीवन सदैव आनंदमय रहता है, कभी सूखता नहीं। इसीलिए भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करके हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, कृष्ण संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेद तीन वाक्य कहे। सारे वेदों में, शास्त्रों में केवल तीन चीजें कही गई हैं, संबंध, हमारा क्या संबंध है भगवान से, अभिधेय, उसको प्राप्त करने का मार्ग यानी भक्ति, और प्रेम प्रयोजन, और इसका प्रयोजन क्या है, प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो इस चीज को पाना, इस प्रेम को पाना एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए अति आवश्यक है। तो हनुमान जी रावण को समझाने लगे कि रावण तुम ऐसे मत बनो, अर्थात वो बता रहे थे कि श्री राम से अपना संबंध मत तोड़ो, उनसे संबंध स्थापित करो, समर्पण कर दो। और वो कहने लगे कि देखो, अगर तुमने श्री राम की शरण ग्रहण की तो ये निश्चित है कि वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुमने उनकी शरण नहीं ली तो ये भी निश्चित है कि बहुत जल्द श्री राम और लक्ष्मण यहां पर आएंगे और अपने तीरों से तुम्हें, तुम्हारे सारे परिवार, बंधु बांधवों सहित समाप्त कर देंगे। रावण को ये सब सुनने की आदत नहीं थी, कोई कहता नहीं था उसको इसे कि तुम्हें कोई समाप्त कर देगा, शरण जाओ, ये क्या बेकार के काम कर रहे हो, सीता को वापस दे दो। हनुमान ने कहा कि जाओ उनकी शरण, वापस कर दो सीता को। तो रावण को क्रोध आया, रावण ने कहा कि अरे वानर, तुम वैसे भी बंदर हो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें, इसने तलवार निकाली है, मैं अभी तुम्हारा वध कर देता हूं। तो विभीषण खड़े हुए और विभीषण ने कहा कि नहीं, एक राजदूत किसी, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर किसी राजा का दूत आता है तो हमें उसे मारना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा उसको हम लोग दंड दे सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए, उसको मार नहीं सकते। और ये दूत के रूप में यहां पर आए हैं, संदेश लेकर आए हैं। तो विभीषण ने मना कर दिया। तो उस समय रावण ने कहा, ठीक है, इसको ऐसा कष्ट दो जो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी हो, ऐसी ऐसी इसको यातना दो। तो उसने कहा कि बंदरों को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है, तो इसकी पूंछ में आग लगा दो, ताकि जीवन भर जब भी अपनी पूंछ को देखे, जली हुई पूंछ को, तो उसको मेरा स्मरण आना चाहिए, उसको याद आना चाहिए त्रिलोकेश्वर रावण। तो तुरंत अब हनुमान जी की पूंछ कोई साधारण पूंछ तो थी नहीं, जैसे बंदरों की होती है, वृंदावन इत्यादि में बंदर कूदते रहते हैं, यहां से ज्यादा बड़ी पूंछ नहीं, इतनी सी होती है, एक लीटर केरोसिन में सब कुछ हो जाए उसकी पूंछ। हनुमान जी की पूंछ तो विशाल पूंछ थी, तो उसके लिए बड़े बड़े सब कपड़े भिगो भिगो के तेल, सारे जो असुर थे वो भी परेशान हो गए, लेकिन फिर रावण का आदेश था तो लगाया और फिर उसको अग्नि लगा दी। और उसके रावण ने कहा कि ऐसी अवस्था में सारे शहर में लेके जाओ उसको पकड़ के, देखने दो सबको कि रावण का विरोध करने वाले का क्या हश्र होता है। हनुमान जी बहुत खुश हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों खुश हो गए? हनुमान जी का और अच्छा, थोड़ा देख लूंगा सिटी को, शहर को, श्री राम की सेवा के लिए जाके उनको बताऊंगा कि क्या क्या है शहर में, कहां कहां है। जैसे किसी शहर पर आक्रमण करना है तो पता तो होना चाहिए कहां बिल्डिंग है, कहां ग्राउंड है, कहां ये। तो हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा है, ये तो मेरी मदद कर रहा है। इसको कहते हैं सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज में। देखिए यहां उनकी पूंछ में आग लगाई जा रही है और उनको सारे बाजारों में घुमाना है, लेकिन हनुमान जी का एटीट्यूड पॉजिटिव, हाँ बहुत अच्छा, रावण मेरी सहायता कर रहा है, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो फिर सैनिक पकड़ कर ले जा रहे हैं, उनकी पूंछ अग्नि भी बड़ी तेज थी और बहुत तेज निकल रही है। हनुमान जी सारे शहर में घूम लिए और एक अवसर मिला हनुमान जी को भगवान की सेवा का। और फिर जब सारा घूम लिए तब हनुमान जी ने सोचा कि अब मुझे भगवान की असली सेवा करनी चाहिए। तो जब जहां से जा रहे थे तो वहां पर लोहे का एक दरवाजा बना हुआ था, हनुमान जी ने उसकी एक रॉड निकाली। हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों के लिए लगता है इसको भी तोड़ना हो, एक पतला सा जो यहाँ पर है, लेकिन हनुमान जी ने ऐसे एक रॉड निकाली। और फिर उसके बाद उसी से जितने भी सिपाही थे जो उनको पकड़ कर ले गए थे, उन सबकी सबको वापस भेज दिया धाम में। और फिर हनुमान जी ने अपना कार्य प्रारंभ किया, फिर बंदर की प्रवृत्ति कूदने लगे एक घर से दूसरे घर, जब तक वो घर जल नहीं जाता था तब तक रहते थे। अब जब ये सब हो रहा था तो कई राक्षसियों ने तुरंत जाकर सीता को सूचना दी, क्योंकि उन्होंने देखा था हनुमान को यहाँ पर ये सारा विध्वंस करते हुए, पकड़ के ले जाते हुए। तो उन्होंने जाके सीता से कहा कि सीता, रावण ने उनकी पूंछ में अग्नि लगा दी है और बहुत तेज जल रही है वो अग्नि। सीता देवी बड़ी दुखी हो गई, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए और प्रार्थना की अग्निदेव से। सीता देवी ने कहा कि अगर मैंने सतीत्व का पालन किया है, अगर मैंने अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, अगर अपने जीवन में मैंने श्री राम की अनन्य भक्ति की है, तो आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि हनुमान को आप जलाइए। मैं सीता देवी ने यहां प्रार्थना की और अचानक हनुमान जी को वहां पर लगा इतनी तेज अग्नि जल रही है, लेकिन हनुमान जी को लग रहा था कि कोई पूंछ में बर्फ लगा रहा है, ठंडी ठंडी। हनुमान जी ने देखा, भाई ये क्या हो गया, एकदम एसी चालू हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा, और अभी जल रही, घर जल रहे हैं लोगों के। हनुमान जी समझ गए, सीता देवी ने मेरे लिए प्रार्थना की, अन्यथा अग्नि से मुझे कोई नहीं बचा सकता, ये सीता देवी की प्रार्थना। और फिर और जोश में आ गए, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से हर एक घर में गए, केवल एक घर में नहीं गए, विभीषण के घर में, उसको छोड़ दिया, बाकी हर घर को जला दिया। और फिर रावण के महल में, वहां पर आकर तो वो नृत्य करने लग गए हनुमान जी, बड़े उत्साह में, भाव विभोर हो गए, एक्सटेसी, रावण के महल में आ गए, पूरा जला दिया उसको। फिर वहां से एक बड़ा ऊंचा स्थान था, वहां पर कूद गए और वहां से पीछे घूम के देखा, और उन्होंने देखा कि सारी लंका जल रही है। दरअसल इस अग्नि में प्रायः लंका की आधी जनसंख्या समाप्त हो गई थी, इतनी भयानक अग्नि थी। तो वो देखने लगे हनुमान जी, और दूर से उन्होंने देखा, पहले तो बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने भगवान की कोई सेवा की, फिर अचानक उनके हृदय में एक विचार आया, उन्होंने कहा कि मैंने सबको जला दिया है, सीता भी उसी में थी, सीता भी तो वही थी लंका में। तो उनको विचार आया कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे द्वारा इस भक्ति लगाने से सीता भी चल गई। और वो विचार आते ही हनुमान जी बड़े शोक में हो गए, और फिर से उनके मन में वो सब विचार आने लगे कि हाय मैंने क्या किया, ये कैसी सेवा की मैंने अपने स्वामी की, सुग्रीव अगर इसको सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और श्री राम वो अपने प्राण त्याग देंगे, लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे, भरत शत्रुघ्न, और इन सब के प्राणों को त्यागने का कारण मैं होगा। हनुमान जी शोक करने लगे, सोचने लगे क्या करूं, मेरी ऐसी बुद्धि है, वानर की बुद्धि है कि मैं सोच नहीं पाया कि सारी लंका को जला रहा हूं, उसमें सीता भी है, जिस कार्य के लिए मैं आया था, जिसके लिए मैंने ये सब कष्ट सहे, उसी का कोई जला दिया। लेकिन फिर अचानक वो बड़े शुभ लक्षणों को देखने लगे। हम लोग रामायण में कई स्थानों पर सुनते हैं कि बुरे लक्षणों को देखा, शुभ चिन्हों को देखा, बुरे चिन्हों को देखा और इससे समझ गए। जैसे जब विवाह होकर सब जा रहे थे, दशरथ महाराज ने अशुभ चिन्हों को देखा, और अशुभ लक्षण देखते ही वो जान गए कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, और वो उनके सोचने के पहले ही विपत्ति सामने आ गई थी, आंधी तूफान रचानक बवंडर और सामने परशुराम जी क्रोध। तो ऐसे ही अभी हनुमान जी ने शुभ चिन्हों को देखा, शुभ चिन्हों को देखकर वो समझ गए कि नहीं, इसका अर्थ यह है कि सीता सुरक्षित है। और फिर उनके मन में विचार आया कि अरे जिन सीता की प्रार्थना से अग्नि ने मुझे जलाना बंद कर दिया, क्या वो अग्नि सीता को जला सकती है। और सुंदर विचार उनके मन में आया कि नहीं, अग्नि कैसे जला सकती है। फिर उन्होंने कहा कि वो सीता जिनके स्वामी की सेवा ये अग्नि करते हैं, क्या अग्नि उनको जला सकती है। ऐसे जब विचार वो कर रहे थे, तो फिर देवताओं ने उनको ये बात बतलाई, गंधर्व किन्नर इत्यादि अपने अपने स्थान से बोलने लगे कि हे हनुमान जी, आप चिंता मत कीजिए, सीता पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और फिर इसको जब सुना तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अब सीता का स्मरण हो आया, तो उन्होंने सोचा कि जाने से पहले एक बार और दर्शन कर लूं। भक्त का भाव होता है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, क्योंकि दर्शन उनकी कथा से उनका मन कभी तृप्त नहीं होता, भरता नहीं। विदुर कहते हैं, क्रीडन विदत्ते द्विज गोसुराना क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनोन तृप्त्यपि शृण्वतां नाम सुश्लोक मौलेश्वरितामृतानि। कि मन कभी तृप्त नहीं होता कि बस 8:30 हो गया, तीन दिन सुन लिया, अब अगले साल तक छुट्टी है। मनो प्रत्यक्षता सुश्लोक मौलेश्वरी का प्रधानी, ऐसी कथाएं जो सुश्लोक अच्छे अच्छे श्लोकों से जिन भगवान का गुणगान होता है, सुश्लोक मौली अमृत के समान है। तो ऐसे अमृत को बार बार पाना चाहते हैं। दरअसल कल हम वर्णन कर रहे थे कि भगवान को 14 स्थान दिए गए थे रहने के लिए। जब भगवान पहले वन में पहुंचे, उन्होंने पूछा मैं कहां पर रहूं, उनका कहां नहीं है, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं कि आप कहां पर रहे। तो उनमें से एक स्थान दिया था कि जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के समान बनाया है और जिनमें कृष्ण कथा भगवान की कथा की नदियां निरंतर पड़ती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि बस स्टॉप करो थोड़े समय के लिए, 8:30 बज गए, समुद्र कभी नहीं कहता। आपने कभी देखा है कि समुद्र में आप जहां भी जाइए, जहां भी नदियों का मिलन समुद्र से होता है, गंगा सागर है या यहीं पास में कारवार है, हम लोग जाते हैं कारवार तो वहां पर एक नदी है काली नदी, गांडेरी से निकलती है और कारवार पहुंचती है, कारवार में समुद्र में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। तो हर समय हर क्षण कितना सारा पानी आकर मिलता रहता है, लेकिन समुद्र कभी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाता कि बस बहुत हो गया। तो जिन्होंने अपने कानों को समुद्र के समान बनाया है, जिसमें कृष्ण कथा की नदियां निरंतर गिरती रहती हैं और वो कभी नहीं कहता, उसके हृदय में आप रही है, ऐसे भगवान को होता है। तो हनुमान जी भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे और फिर सीता देवी के दर्शन के अभिलाषी हुए, फिर से गए सीता देवी के पास, उनको प्रणाम किया और सीता देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई हनुमान जी को देखकर। एक कारण और भी था हनुमान का जाने का, क्योंकि वो जानते थे कि सीता मेरे लिए चिंतित होंगी, क्योंकि सीता देवी को समाचार मिला था कि पूंछ में आग लगाई है, तो चिंतित होंगी कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपने समुद्र में जाकर पूंछ में से आग बुझा ली थी, तो फिर गए सीता देवी को प्रणाम किया। सीता देवी ने हनुमान से कहा कि जितना जल्दी हो श्री राम को यहां ले आना, रावण ने बहुत थोड़ा समय दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उतने समय तक अपने प्राणों को बनाए रखूंगी या नहीं, लेकिन आज आपके यहां आने से मुझे बहुत आनंद हुआ है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो एक दिन यहीं रुकिए, कहीं कहीं पर छुप कर रह लेना थोड़ा समय, क्योंकि मुझे बहुत आनंद हो रहा है आपकी उपस्थिति से। आचार्य समझाते हैं कि आत्मा जब आध्यात्मिक क्रियाओं के संपर्क में आती है, आत्मा जब भक्तों के संपर्क में आती है, आत्मा जब भगवान के संपर्क में आती है, तो दिव्य आनंद का अनुभव करती है। शरीर के स्तर पर हम जिस आनंद का अनुभव करते हैं वो दिव्य नहीं है, वो दरअसल आनंद ही नहीं है, वो तो केवल दो दुखों के बीच का समय है, एक दुख समाप्त हुआ दूसरा आने वाला है, उसको आनंद कहते हैं इस जगत में। लेकिन असली आनंद तो वो आनंद है जब भक्तों के दर्शन होते हैं, वो आनंद है जब भगवान के दर्शन होते हैं, जब भगवान की कथा सुनते हैं, जब भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वो असली आनंद है। परिभक्ति मार्ग ये उस आनंद को प्रदान करता है, केवल आनंद कंद, केवल आनंद है। और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने इतनी कृपा की है कि उस आनंद के मार्ग को इतना सरल बना दिया है, वही आनंद का मार्ग जो पूर्व समय में पूर्व युगों में बड़ा कष्टदायी था, कलयुग में बड़ा सरल है, केवल भगवान के नाम का उच्चारण। तो हनुमान जी गए, सीता देवी ने कहा कि थोड़ा समय रुको, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि अब मैं बहुत जल्द श्री राम के पास जाना चाहता हूं, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो यहां पर आए, मैं अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी इसी समय आपसे विनती करता हूं कि मुझे अनुमति दीजिए कि मैं जाऊं अभी श्री राम के पास। सीता देवी ने जब श्री राम का नाम सुना तो और हृदय में प्रसन्नता। सीता देवी ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं प्रार्थना करती हूं कि जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, आप आराम से वहां तक पहुंच जाओ। और फिर हनुमान जी आए, बड़े प्रसन्न थे, और फिर उन्हें वापस जाना था, उन्होंने एक पर्वत ढूंढा, एक पर्वत दिखाई दिया, और उस पर्वत के ऊपर खड़े हुए हनुमान जी, फिर से पूरी अपनी शक्ति एकत्रित की हनुमान जी ने वापस जाने के लिए, जैसे आने के लिए की थी, हमने वर्णन किया था। और फिर जैसे ही उन्होंने उस पर्वत को दबाया, उन्होंने छलांग लगाई, वो पर्वत पाताल में चला गया, सहन नहीं कर पाया हनुमान जी की शक्ति को, सारे पेड़ उखड़ उखड़ कर इधर गिर गए। और फिर हनुमान जी ने जोर से छलांग लगाई, भगवान श्री राम को पुकारा, उनका गुणगान किया, और फिर ऐसे में छलांग लगाकर फिर से उसी मार्ग से होते हुए महेंद्र पर्वत की ओर आए। जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों को, अंगद इत्यादि को ये कहा था कि आप जाना नहीं, मैं अभी आता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं जा रहा हूं, अगर सीता मिली तो मैं अभी तुरंत आऊंगा, नहीं मिली तो फिर रावण को ले आऊंगा, लेकिन आप जाना नहीं, यहां पर बहुत सारे फल वगैरह हैं, खाते रहना, लेकिन जाना नहीं। तो हनुमान जी आए, और हनुमान जी को आते देखकर सारे वानर बड़े प्रसन्न हो गए, और जांबवंत हनुमान जी जब पास पहुंचे महेंद्र पर्वत के, तो बड़ी जोर से गर्जना की हनुमान जी ने। जांबवंत ने जब वो गर्जना को सुना तो जांबवंत समझ गए, और उन्होंने सारे वानरों से कहा अब हमारे लिए बड़े हर्ष का समय है, हनुमान जी सफल होकर आए हैं। तो सबने कहा आपको कैसे पता चला, अभी तो आए भी नहीं है, ऊपर हवा में ही है अभी तो। तुमने कहा उनकी गर्जना सुनो, उनकी उनकी गर्जना में एक आनंद है, एक विजय का उल्लास है।
जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में।
तो हनुमान जी ने कहा कि बहुत आनंद है, हनुमान जामन ने कहा कि उनकी आवाज में इतना आनंद है, हर्ष है, तो ये निश्चित है कि वो सफल हो गए हैं। और फिर हनुमान जी आए। आचार्य समझाते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, हनुमान जी ने क्यों नहीं कहा उनको कि आप चले जाओ मैं ढूंढकर आ जाऊंगा। हनुमान जी ये भी तो कह सकते थे, क्यों उनको वहां पर रुका कर रखा, क्या वो चाहते थे कि वहां आए सब लोग उनको बोले वाह वाह हनुमान, क्या कारण था, क्यों नहीं जाने दिया। बहुत महत्वपूर्ण कारण, हनुमान जी ने सोचा कि अगर इन सबको भेज दिया, ये सब वापस चले जाएंगे और सब लोग जान जाएंगे कि ये लोग ढूंढ नहीं पाए, निराश होकर वापस आए, और हनुमान जी जाने से पहले ही ये जानते थे कि मैं सफल होकर लौटूंगा, ये विश्वास था उनको, क्योंकि श्री राम की सेवा के लिए जा रहा। और उन्होंने सोचा कि जब मैं सफल होकर लौटूंगा तो मैं अकेला होऊंगा, और सारा का सारा श्रेय सीता का खोजने का मुझे मिल जाएगा, पर जो वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा सब लोग रुको, हम सब जाएंगे और हम सब इस श्रेय को लेंगे। श्री राम के सामने ऐसा नहीं हो कि लोग बोले हनुमान ने ढूंढा है, हम सब जाएंगे, अंगद जाएंगे, जांबवंत जाएंगे, नील जाएगा, सब साथ में जाएंगे, और सब कहेंगे कि हाँ हमने सीता को ढूंढा, हमारे दल ने सीता को ढूंढा। ये भावना थी भगवान हनुमान जी की, वो खुद का श्रेय नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा आप रुके रहना, आप जाना नहीं। ये भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण भावना है, जहां भक्त श्रेय अपने लिए नहीं ले। दरअसल 14 स्थानों में से भी एक स्थान ऐसा है जिसमें वर्णन किया गया है कि ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति जो सारी अच्छी चीजों के लिए श्रेय आपको दे और सारी बुराइयों के लिए श्रेय खुद ले, सारी गलतियों का, सारे दोषों की, सारी निंदाओं की, बुराइयों का श्रेय खुद ले, लेकिन अच्छी चीजों का, भक्ति का श्रेय आपको दे कि आपकी वजह से हुआ है। ऐसे भक्त के हृदय में आप रहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है, हमें श्रेय दूसरों को देना चाहिए। कोई कहे कि आप भी, आप बहुत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, इसका श्रेय मेरे गुरु को है। आप बहुत सुंदर बोलते हैं, इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद को है। उन्होंने सिखलाया, नहीं तो हमारी क्या योग्यता थी। और प्रभुपाद ने कहा, एक बार उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि श्रील प्रभुपाद हमारी क्या योग्यता है कि हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए करने का अवसर मिल रहा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपकी कोई योग्यता नहीं है, मैंने आपको योग्य बनाया। और ये अहंकार नहीं था, ये प्रभुपाद सिखला रहे थे। तो अगर कोई अच्छा बोलता है उसको कहना चाहिए, श्रील प्रभुपाद को श्रेय देना चाहिए, उनकी शक्ति है। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छी सेवा करता है, तो श्रेय दूसरों को देना चाहिए, भक्तों को देना चाहिए आपकी वजह से। और ये सत्य है, केवल श्रेय देना चाहिए दिखावे के लिए नहीं, कि बाहरी दृष्टि से हम कह रहे प्रभु जी ये सब तो आपकी वजह से हुआ, लेकिन हृदय में मैं जानता हूं मेरे से महान कोई और है ही नहीं इस जगत में। कोई आकर बोले कि प्रभु जी आप तो महान शुद्ध भक्त हो गए हैं, बोले नहीं 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 आपका तो दास हूं, लेकिन हृदय में ये व्यक्ति मुझे जान गया है, ये मेरी शक्ति को समझ गया है, ये जानता है कि मैं शुद्ध भक्त। ये नहीं, हमें हृदय से श्रेय देना चाहिए दूसरे को, क्योंकि अगर भक्ति मार्ग में टिकना है, भक्ति मार्ग में बने रहना है, भक्ति ये जो संस्था है, इस्कॉन है, जिसमें भक्ति फल फूल कर बड़ी हो रही है, ये बोट के समान है, श्री प्रभुपाद की एक ये नाव है। वैसे तो मनुष्य जीवन भी एक बोट के समान है, भागवत में वर्णन आता है कि जो मनुष्य जीवन है, मृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये ऐसी बोट है जिसके कर्णधार गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं। आप सब लोगों का ध्यान घड़ी की ओर बहुत जा रहा है, नहीं जा रहा है सही में, तो थोड़ी देर और आगे बोल सकते हैं। आगे वालों ने बोला, पीछे वाले शायद गाइड से जाना चाहते हैं, सब लोग जरा जोर से बोले तो उत्साह आएगा। सभी 12 बजे तक कोई तकलीफ नहीं, या फिर सीधे सुबह मंगल आरती करेंगे। तो जब हम लोग ये श्रेय खुद लेना चाहते हैं, तो भक्ति के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को त्याग देते हैं कि अगर हम भक्ति में हैं, अगर हम जप कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रों को समझ रहे हैं, अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, हार बना रहे हैं, भगवान की ड्रेसिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, तो ये भक्तों की शक्ति के कारण है, किसी न किसी भक्त की कृपा है मेरे ऊपर और तब मैं ये कर पा रहा हूं। इस भावना को कभी नहीं त्यागना चाहिए, जहां हम मेरे बल पर भक्ति करते हैं, अपने बल पर भक्ति करते हैं, तो उसका अर्थ है कि हम केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं। निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया, अपने बल, निज बल प्रति कोई भरोसा नहीं है इस पर, आपके चरणों में मैंने अपने आप को पूरा समर्पण किया, ये भाव होना चाहिए। और ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको अपने हृदय में लिख लीजिए कि हम भक्ति में हैं तो केवल भक्तों की कृपा से, इसलिए श्रेय उनको देना चाहिए। आपको 10 साल हुए, 15 साल हुए, 20 साल हुए, आपको कोई पद मिला, आप ये, आपने ये किया, आपने वो, श्रेय दीजिए दूसरों को। हमारा कोई श्रेय नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, और जब अगर हमें लगे कि मेरी योग्यता है, मेरा श्रेय है अपना पूर्व जीवन देखना चाहिए, देखना चाहिए कहां पे थे और किस व्यक्ति ने आपको उस गड्ढे में से निकाला है। भौतिक जगत की तुलना एक मल के गड्ढे से की गई है और एक गुरु है, एक साधु है जो इस गड्ढे में से निकालते करुणावश। तो अगर हमें अहंकार हो जाए, ये श्रेय हम लेने लगे, तो हमें अपना पूर्व जीवन याद करना चाहिए कि किस तरह के पापों में पड़ा था, किस तरह के कष्टों में पड़ा था, गड्ढे में था मन के। और तब हमें स्मरण हो आएगा उस भक्त, उस साधु, उस गुरु की कृपा का। इसलिए हर क्षण हमें धन्यवाद देना चाहिए गुरु को। और उससे लाभ क्या है? एक, हमारी चेतना शुद्ध रहती है, दूसरा, हम हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, और तीसरा, पद्म पुराण बतलाता है कि केवल शुद्ध भक्तों के स्मरण से उनके किया हुआ पुण्य का 100वां हिस्सा हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ये नहीं चाहते थे कि श्री राम के सामने मैं अकेला जाऊं, सारा श्रेय मैं ले लूं कि देखो मैं सीता को खोज के आया। इसीलिए उन्होंने कहा आप सब रुकना, हम सब जाएंगे। तो हनुमान जी आए, महेंद्र पर्वत पर लैंडिंग की उन्होंने, बहुत सेफ लैंडिंग थी, कुछ तकलीफ नहीं हुई, महेंद्र पर्वत भी हिला नहीं। और फिर सारे वानरों को उन्होंने बुलाया, जामवंत को बुलाया, अंगद को बुलाया, नील को बुलाया, और सब वहां पर आए और सब उत्सुक थे सुनने के लिए। और हनुमान जी ने फिर घोषणा की कि मैंने सीता को ढूंढ लिया है। पवन पुत्र हनुमान की जय। और आगे क्या हुआ, क्या संवाद हुआ, बहुत सुंदर संवाद है। और उसके बाद जब श्री राम के पास गए तो श्री राम ने एक बहुत ही दिव्य भेंट हनुमान जी को दी। जब उनको पता चला कि जब हनुमान जी ने सीता देवी का संदेश और वो कथा जो सीता देवी ने कही थी वो सुनाई, तो बड़ा ही दिव्य भेंट हनुमान जी को दी। और साथ ही साथ बाकी सारे वानर भी बड़े प्रसन्न हुए। फिर आगे बहुत सारे सुंदर वर्णन है, इसको हम लोग कल सुबह ठीक 8 बजे प्रारंभ करेंगे, ये कथा आगे जारी रहेगी। तो आप सब से विनती है कि आप सब कल सुबह, कल रामनवमी है, हो सके तो नहीं निश्चित रूप से मंगल आरती में आइए 4:30 बजे सुबह। ऐसे दिवसों पर तपस्या करने का बड़ा लाभ होता है, भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो आप सब कृपया करके सुबह मंगल आरती आइए और फिर 8 बजे से ये आगे कथा, भगवान श्री राम की कथा जारी रहेगी। कहाँ तक पहुँचेंगे इस वर्ष पता नहीं, लेकिन जहाँ भी पहुँचे पता नहीं, समुद्र पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कल, जहाँ भी पहुँचे बस प्रार्थना करेंगे भगवान श्री राम से कि उनके चरण कमलों में हमें स्थान दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। 5 मिनट कीर्तन करेंगे इससे पहले कि हम लोग प्रसाद ग्रहण।
श्री राम जय राम जय जय
उत्सव में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिए। हरे कृष्ण।